वालेकुम सलाम।
अच्छा ये सूरह नूर में हमारे पास हुक्म आया पर्दे का, और बड़ा डिटेल में आया, यानी शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ डिस्कस हो गई उसके अंदर। तो अब ये मौलवी नया जो है ना, बीच में एक नया शोशा, यानी कहीं और से एक हुक्म है जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए था, जो जाहिर है अल्लाह ने अगर वो पर्दे के अंदर रखना होता तो वो भी इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर यहाँ पर रखता, तो वो स्पेसिफिक हुक्म जो है वो उन्होंने उठा के यहाँ पे फिट कर दिया है चेहरे को कवर करने वाला। तो ये क्या वजह, मतलब ये क्यों इस तरह से हो?
आपके सवाल के अंदर दो सवाल हैं। एक तो क्या अल्लाह ताला की कुरान पाक के अंदर जहाँ जहाँ वे जिस चीज़ के बारे में हकाम हैं वो क्या अलग से ट्रीट किए जाएँ, या जिस चैप्टर को अल्लाह ताला ने खुद शुरू किया है उस चैप्टर को जहाँ पे भी हम ख़त्म कर रहे हैं अल्लाह ताला ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके अलावा उस चैप्टर के बारे में कोई भी आयत है तो उसको फिर हम उसमें शामिल ना करें। ये एक ऐसी बात है जिसका आई एम श्योर आप या कोई भी दुनिया में बंदा कंफ्यूज नहीं है कि अल्लाह ताला की कोई भी आयत हो एक ख़ास मज़मून के बारे में हो तो ये नहीं देख सकते हम कि वो कुरान पाक है किस हिस्से में। अगर उस मज़मून के ऊपर कोई अहकाम हैं तो उसको उस मज़मून में डालना पड़ेगा बग़ैर ये सोचे कि ये तो सूरह अहज़ाब में आया है और वहाँ पे सूरह नूर का चैप्टर है, क्योंकि नुज़ूली तरतीब भी हमारे पास नहीं है। पहले तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम बाकी की तमाम तर लाइफ दुनिया ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर कुरान पाक के अंदर फैली हुई तमाम तर आयात को इकट्ठा ही करके उसका एक मज़मून खुद कम्प्लीट करते हैं। दूसरी बात, जो सूरह नूर का चैप्टर एक कम्प्लीट हुआ, शुरू हुआ, कम्प्लीट हुआ, ये जो मफरूज़ा है ये बड़ा लेटर ऑन शुरू हुआ है उम्मत में कि सूरह नूर के अलावा पर्दे का कोई चैप्टर ही नहीं है, हालांकि पर्दे का चैप्टर तो है। पहली बात तो ये कि सूरह नूर का जो चैप्टर है वो घर के अंदर के आदाब हैं। अगर आप वो पढ़ें तो आपको पता चलता है वो चैप्टर शुरू ही तब होता है कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हो, उसके बाद फिर महरम कौन है, नॉन महरम कौन है, ना महरम कौन है, और फिर बिल्कुल बाहर के बंदे के साथ खवातीन का किस तरीके का पर्दा होगा, घर के अपने मर्द हजरात जो कि खावन के आगे से रिश्तेदार हैं उनके साथ क्या रवैया होगा पर्दे का, वो वाला चैप्टर डिस्कस हुआ है। जैसे ही सूरह अहज़ाब की बारी आएगी तो वो खुद ही समझ आ जाती है कि वहीं से समझ आ जाती है कि वो जब औरत घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ पर्दे का क्या इंतज़ाम करना है, और वो बड़ा क्लियर हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों के बारे में लोग कहते हैं, और हुआ तो था वाकया कि वो लोग फिर तंग करना शुरू हो गए थे कि हमें पता नहीं था कि वो आपके घर की बीबी हैं, तो पूरी की पूरी उम्मत की बीबियों पे हुक्म क्यों आ गया फिर? और अगर ये मान भी ला जाए कि हाँ जी वो मुसलमान आज़ाद औरतों को जान के तंग करते थे, सारी आज़ाद औरतों को, तो नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की वो आयत, इसमें भी दो शाखें हैं फिर। एक तो क्या वो अल्लाह की आयत फिर क्या तनसीख मनसूख हो गई नाऊज़ बिल्लाह, और अगर नहीं हुई तो क्या फिर वो उसी सिर्फ वाक्य के ऊपर मुख्तस करने की जो हमने जरूरत की है, क्योंकि वैसा ही वाक्य दोबारा होगा तब वाली अहकाम ट्रिगर होंगे, तो फिर वो वाला वाक्य तो 1400 साल क्या हजरत आदम से चलता हुआ आ रहा है, औरतों को बाहर मर्दों ने तंग किया हुआ है, वो तो बाद में मुसलमानों को पहचानना ना पहचानने के ऊपर इतना कोई कॉम्प्लिकेशन, ये दिमाग की अपनी एक कॉम्प्लिकेशन है जो खुद क्रिएट करनी चाहे कोई बंदा तो हो कि नहीं वो मुसलमान अगर औरत होगी तो वो वाले लोग उस तरह के लोग बाहर पाए जाएंगे जो कि आपको गैर मुस्लिम समझ के छेड़ेंगे, इसलिए सिर्फ उन लोगों के होते हुए मुसलमान औरतों ने मुंह को कवर करना है। तो ये तो एक ज़बरदस्ती एक कोई ऐसी कन्फ्यूजन को अपने अंदर कोई दिल में कोई मर्ज पाल रहा हो तो हो, वरना तो एक बड़ी सिंप्लिसिटी से देखा जाए कि सूरह नूर का चैप्टर घर के अंदर के आदाब बताता है, सूरह अहज़ाब की आयत जो है वो 59 वो घर के बाहर के आदाब बताती, और हुक्म भी ऐसे ही आया कि आए नबी अपनी बीवियों और बेटियों से कह दो और मुसलमानों की बीवियों और बेटियों से कह दो कि जब घर से बाहर निकलें तो फिर उनके पर्दे के आदाब क्या हैं। सो ये जो और अगर समझ लें कि सूरह नूर ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई पर्दा नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं बाकी के आदाब कहाँ हैं? मतलब फिर तो 70 जाहिर उसमें तो 70 का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि औरत का कौन कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसने यहाँ करनी है क्या नहीं कर सकती, स्पेशली घर के बाहर। सो ये मामला जो है ना वो उसको सूरह नूर को जो घर के अंदर रखें ये चैप्टर है, और वो स्टार्ट भी ऐसे होता है, और सूरह अहज़ाब को बाहर। अकॉर्डिंग टू द टिल्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जिस तरीके से गुनाह का दौर शुरू हुआ और बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, तो हमें तो کنسیپچولی سب سے پہلے ہمیں سورہ عذاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یار اس وقت تو اکا دکا ایسا واقعہ ہوگا, اب تو روز ہوتا ہے. پہلے کہاں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ چار چار سال کی بچیاں ریپ ہوتی تھیں, عرب میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. اور یہاں پہ تو چار سال کی بچی نہیں محفوظ, اور یہ کہہ رہے ہیں عورت کا منہ کیوں کور کریں, سورہ نور میں نہیں آیا ہوا. ان لوگوں کو تو چاہیے کہ لوہے کے ڈھکنوں میں عورتوں کو باہر بھیجا کریں جس طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں. سو یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر ہم ایک نجی بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ معاملات اس وقت کیا تھے کیا نہیں تھے. ابھی وہ معاملات اس سے کئی زیادہ بدتر ہیں. رہی بات آپ کے سوال کی, تو وہ چیپٹر انڈورس اور آؤٹ ڈورس کے الگ الگ ہے.
اچھا یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ بڑی عجیب آپ نے بتایا ہے کہ ان ڈور پردہ اور ہے اور آؤٹ ڈور کا پردہ اور ہے. یہ تو مولوی بھی, یہ تو کسی مولوی نے بھی آج تک کسی سے یہ بات نہیں سنی ہم سے. تو یہ بڑا نیا ایک آپ نے کانسیپٹ نکالا ہے اور معاملے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پردہ سچویشنل تھا باہر کا کہ وہ ہراسمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے, تو اب تو پردے کے اندر بھی عورتیں ہراس ہوتی ہیں باہر پورا نقاب کر کے بھی, پھر بھی ہراس ہوتی ہیں. بلکہ باہر کے ملک میں تو نقاب والی زیادہ ہراس ہوتی ہے. وہ منی اسکرٹ میں جائے تو پھر ہراس شاید نہ ہو, لیکن نقاب میں تو جتنا وہاں پہ جو اسلاموفوبیا ہے
بالکل,
وہ تو الٹا اس کو اور زیادہ ہراس کرتے ہیں, تو پھر اس کو تو اتار دینا چاہیے.
بالکل, دو باتیں آپ نے کی. ایک تو کہ یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ گھر کے اندر کے آداب بتا رہی ہے اور سورہ عذاب باہر کے, تو وہ تو آپ عربی پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گا. بہرحال یہ بات نئی ہے کہ نہیں, یہ 1400 سال سے اس بات پہ تو اجماع امت ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ جو احزاب ہے وہی ہے پردے کی اصلی آیت. یہ تو بعد میں ایک بڑی ریسنٹ بحث ہے علماء کرام کی کہ سورہ نور, بلکہ یہ 1% فریکشن کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتی علماء کرام کی کہ جو پردے کی آیات ہیں وہ سورہ عذاب سے آ رہی ہیں, جو پردے کے احکام ہیں وہ سورہ عذاب کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو سچویشنل ہیزرڈ جو ہے وہ ابھی بڑا ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پردہ کرے گی وہ زیادہ ہراس ہوگی تو اس کو پردے اتار دینا چاہیے. پہلی بات تو ہراس مسلمان عورت جو ہے وہ یہی تو وہ کیس کر رہے ہیں کہ ہراس ہوتی ہے, اس لیے وہ پردے کی آیت اس کے اوپر فٹ کرنی ہے. آپ نے سورہ عذاب تب ٹریگر کریں جب ہراسمنٹ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ آپ تو مسلمان عورت ہراس ہی ہو رہی ہے, تو پھر تو یقیناً ہو گیا سورہ عذاب کا ہی دور آ گیا. اس کا مطلب ہے یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا, آپ تو مسلمان عورت پہچانی جائے گی تو ہراس ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پردہ اتار دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ والا دور اکراس دا بورڈ آ چکا ہے کہ ایٹ لیسٹ ویسٹ میں تو آ چکا ہے کہ اگر آپ نقاب میں جائیں گی اور پہچانی جائیں گی کہ مسلمان ہیں تو پھر آپ اس عورت کو ہراس کیا جائے گا. اس موقع کے اوپر نعوذ باللہ یہ ہے وہ نکال لیجئے تو جی کہ چونکہ ہراسمنٹ واز دا کیس سو آپ عورتیں ننگی ہو جائیں سو بچ جائیں گی. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک وشیس سرکل کے اندر چلے گئے ہیں. اسی لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس موقع اس جرح کو شروع ہی نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کسی ایک موقع کے اوپر فٹ کر دینی. اب وہ موقع اس لیول پہ آ گیا کہ وہ مسلمان منہ کے بل گریں گے اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ہراسمنٹ کی وجہ سے پردہ آیا تھا, اب ہراسمنٹ بڑھ گئی ہے تو پردہ اتار دیں. مطلب دس از اے لاجک دس از بیانڈ ان لاجیکل. مطلب یہ والا لاجک کسی بھی جگہ کے اوپر آپ ٹھہرا کے کوشش کریں باقی کسی احکام پہ کہ جی چونکہ مسلمانوں کو اسرائیل مارنا شروع ہو گیا تو جہاد بند کر دیں. مطلب یہ بالکل وہی بات آپ نے کی, کیونکہ جیسے انہوں نے آپ گنیں ڈالنی ہیں تو ہم نے چونکہ گنیں اٹھائی تھیں تو جہاد شروع ہو گیا تھا ہمارے خلاف, آپ چونکہ وہ ایٹم بم لے آئے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم بندوقیں پھینک دیں. بالکل لٹرلی یہ والا لاجک ہے اس کے اوپر. اور اسلام کے 0 سے لے کے 100 تک تمام احکام لیں اس کے اوپر یہ لاجک لگائیں تو ہمیں تو بالکل ہی کہانی ختم کر دینی چاہیے. ہمیں اپنے حلیے بدل لینے چاہیے, بالکل یہودی ہو جانا چاہیے, ہمیں اپنے کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہونے کے اوپر ہی مسئلہ ہے. سب کچھ ان کے تابع کر دیں, ہاللیلویہ گانا شروع کر دیں, جا کے چرچوں میں ڈانس شروع کر دیں. مطلب آپ نے تو جو سرا پکڑا ہے اس کے بعد تو ایک ایک کر کے آپ نے سب کچھ ہی ختم کر دینا ہے. تو یہ تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر ہم ہراس ہو رہے ہیں تو ہمیں دگنا اسلام پریکٹس کرنا پڑے گا, ایٹ لیسٹ اپنے ایمان کی تکمیل تو کریں. مجھے تو پتا ہے اجتماعی طور پہ تو نہیں کرتے مسلمان, مگر یہ بات تو پکی طے ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں مسلمان دیکھ کے ہراس ہوتے ہیں اب کہ وہ مسلمان پہچانا جائے, تو پھر تو آپ کا ہی کا مقدمہ آپ ہی کے سر پہ آتا ہے کہ پھر تو اس سورہ عذاب ہی کے اوپر پردہ فٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو احکام سورہ عذاب کے آئے ہیں پھر ہمیں وہ لینے پڑیں گے. بیکاز آپ نے کہا ایک طرف کہ وہ سچویشنل آیت تھی اور ایک طرف ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ سچویشن اب بالکل अफ्रीका में भी वही है, अमेरिका में वही है, एशिया में वही है, तो फिर तो सूरह नूर छोड़ें, फिर सूरह अज़ाब की तरफ आए। जो पहला सवाल था आपका, मैं उसकी थोड़ी सी और तशरीह कर दूं कि सूरह नूर के उस चैप्टर को पढ़ते ही पता चल जाता है कि वो इनडोर है, कि जब घर में किसी के दाखिल हो तो इजाज़त लेके जाओ, और अगर वो कहें कि मत आना तो वापस लौट जाओ, और अगर भाई शोहर के भाई हों तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें उस जो है ना अहकाम में आई हैं, औरत कौन कौन से जिस्म का हिस्सा दिखा सकती है अपने ससुर को, अपने शोहर को, अपने शोहर के भाई को, अपने बाप को, और तमाम मुहर्रमात बता दी उसके उसको सामने की बात है कि ये घर के अंदर की बात हो रही, और अगर यही लोग बाहर खड़े होंगे तो फिर दायरा ये वाला अहकाम नहीं चलेंगे, क्योंकि बाहर फिर वो वाला बंदा भी होगा जिसको इजाज़त चाहिए थी घर में आने की, समझ रहे, क्योंकि एक दो उसको इजाज़त मिल गई, और वो मैं फॉर एग्जांपल मेरा भाई आता है घर में तो मेरी बेगमों के ऊपर कोई और अहकाम का इतलाक होता है, वो देवर है उनका, मगर मेरा दोस्त आ जाता है तो उसके ऊपर फिर वही सूरह अज़ाब की आयत लगती है फिर, क्योंकि अब वो बाहर का बंदा आ गया, अब मेरे भाई मेरे मैं और मेरे अब्बा जी और मेरी बेगम के अब्बा जी साथ ले घर घर से बाहर निकलते हैं तो हम चार बंदे तो नहीं है ना खाली, तो वो वहाँ पर सूरह नूर प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि मेरे तो घर वाले साथ हैं, वो बाकी के लोग भी तो साथ हैं उनके साथ, तो कोई ऐसा हुक्म नहीं है सूरह नूर में। सूरह नूर में अगर ऐसा कोई एक भी रिश्ता बताया गया कि ना महरम है, बिल्कुल ही ना महरम है, बिल्कुल दोस्त यार है शोहर के, या फिर थर्ड कजन्स हैं, उसके ऊपर फिर सूरह नूर के अंदर कोई रिश्ता निकाल के देते हैं तो मैं कह दूंगा हाँ वो भी आउटडोर है, ठीक है, वो सारे के सारे घर के रिश्तेदारों की बात हो रही है कि आप औरत जब घर में होगी तो सारे मर्द तो होंगे, उसके ससुर होगा, उसका शोहर होगा, उसका शोहर के भाई होंगे, अपना जो भाई अपने अबू के सामने उसने क्या किस तरीके से रहना है, अपने जीनत क्या चीज़ है जो दिखा सकती है क्या नहीं दिखा सकती, दिस इज अ वेरी नेचुरल डिस्पोजिशन, इसको पढ़ते ही नेचुरली इंसान को पता चलता है कि यार घर के अंदर क्या आदाब की बात हो रही है। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। बहरहाल आपका जो नुकता है वो ये कि क्या नई बात है, नहीं ये बिल्कुल नई बात नहीं है, ये नई बात है कि सूरह नूर ही पर्दे का चैप्टर है, इसके अलावा पर्दे की जितनी बातें की गई हैं उसको पर्दे में मत डालें, ये एक बिल्कुल नई बात है, ठीक है, ये इस्लाम की फिलासफी के खिलाफ है कि दो चीज़ों पर फलसफा टकरा रहा था हमारा, एक कुरान की कोई भी आए तो अपनी मर्जी से फारिग करते हैं कि नहीं जी यहाँ पर हमें मजमून में डालनी नहीं, ये कौन सा ये जरूरत कैसे आई मुसलमानों के अंदर, सिर्फ नबी को ये इजाज़त है कि किस मौके के ऊपर किस मजमून का को कंबाइन करके अहकाम जारी किए जाए, हम में से कौन सा ऐसा बंदा, हम में क्या किसी साहबी को भी जरूरत नहीं। दूसरा जो आपने जो जहां पे ये फलसफा टकराता है कि पर्दे का हुक्म आए ही क्यों, यहां से आपको पता चलेगा कि फलसफा सबसे पहले तो इंसान औरत का जिस्म के से पहले उसका मुंह कवर करना चाहिए, सारी की सारी अट्रैक्शन तो आदमियों ने फितना मुंह से निकाला हुआ औरत का, वरना आप खुद सोचें जिस्म के तमाम हिस्सों के ऊपर कोई एक इंडस्ट्री नहीं खुली सिवाय पोर्नोग्राफी के, और जिसम के खाली इस हिस्से के ऊपर ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को कॉस्मेटिक्स की पैसे कमा रही है, क्यों, क्योंकि फितना इधर से फैला रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं ये दिखा दो और बाकी सारा का सारा कुछ जो है वो सूरह नूर से पकड़ लो, ये अजीब सी बात है, सारा फितने की जड़ जो है वो खातून का चेहरा है, फलसफे में आप जाएं फिलॉसफी ऑफ इस्लाम तो ट्रिगर ही उसके चेहरे के ऊपर होती है, ये सिर्फ चेहरे का हुक्म आया होता और कोई हुक्म ना आया होता तो हम कॉमन सेंस से बाकी का जिस्म कवर कर लेते कि हाँ यार इसे तो फितरा पैदा, तो हमें यहाँ पे कॉमन सेंस क्यों नहीं रहती हमारी। और एक और जिराबी की रहती है कि हज में चूंकि चेहरा कवर करने का और ना कवर करने का हुक्म है, इस ये भी एक जिरा होती है कि हज में तो औरत अपना चेहरा दिखा देती है तो फिर ठीक है, फिर हज में और भी बड़ा मामला होते हैं वो, फिर बाकी के रोजे में तो हम खाना नहीं खाते, बाकी के दिनों में क्यों खाना फिर खा रहे होते हैं। हर हुक्म के अंदर उसकी अपने बाउंड्रीज और न्यू स्पेसिफिकेशंस होती हैं जहाँ पे वो बाकी की चीज़ों से मुबर्रा हुआ होता है, so there are things which you have to see in a bigger picture and related to the core philosophy of Islam as to why any order comes down to human beings. If you cannot correlate these two things to phir to bahas ki to matlab koi limit hi nahi hai na ki hum kahan kar sake, aur isliye baatein khul rahi hain।